الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ارشاد فرمایا، اقصر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه یوم مشہود تشہده الملائکة. فرمایا، تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان. حدیث میں فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. حیث کان، فرمایا کہ سروے زمین کے وہ کسی بھی خطے اور کونے میں موجود ہو، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبعد وفاتک، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی. درود پڑھنے والا درود پڑھے گا اور اس کی آواز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی. اور یہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آج پھر آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے اس سلسلے میں تین سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں، پہلے فضائل پر بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم چند احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر ریکارڈڈ سوالات کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے. آئیے فضائل پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد کی درستگی کے بعد نماز تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم اور اعظم فریضہ ہے. کہ فرسٹ آف آل، ایمان کے بعد جب ایمان اور عقائد درست ہیں تو سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ہے نماز. نماز کی اس اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حقوق اللہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی بندے کا جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو اس وقت میں حقوق اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. تو آئیے نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. شعب الایمان میں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے رکوع، نماز کے سجود और किरात को मुकम्मल करता है, यानी जैसे नमाज पढ़ने का हक है वैसे नमाज पढ़ता है। रुकू अपनी जगह कंप्लीट है, कयाम अपनी जगह कंप्लीट है, किरात जितनी करनी चाहिए उस जैसी करनी चाहिए उसके मुताबिक है। तो फरमाया कि वो नमाज जो इसने पढ़ी है, वो नमाज इस शख्स को मुखातिब करते हुए कहती है कि अल्लाह तबारक व ताला तेरी हिफाजत करे जैसे तूने मेरी हिफाजत की है, यानी जैसे नमाज पढ़ने का तूने हक अदा किया है, अल्लाह तबारक व ताला तेरी हिफाजत फरमाए जैसे तूने मेरी हिफाजत की। फिर उस नमाज को फरमाया आसमानों की तरफ बुलंद किया जाता है तो उस पर चमक और नूर होता है। उस नमाज के लिए आसमानों के दरवाजे खोले जाते हैं, यहां तक कि रब्बे कायनात की बारगाह में उसे पेश कर दिया जाता है। और वो नमाज फिर उस नमाजी की अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सिफारिश करती है, शफाअत करती है। जी हाँ, नमाज अगर अच्छे तरीके से अदा की है तो वही नमाज बंदे के लिए सिफारशी बन जाती है। और इसी हदीस मुबारक में फरमाया, अगर उस नमाजी ने नमाज के रुकू और सुजूद सही तरीके से अदा ना किए, किरात को मुकम्मल ना किया, तो नमाज फिर इसके बारे में क्या कहती है? नमाज कहती है कि अल्लाह तबारक व ताला तुझे जाया कर दे जैसे तूने मुझे जाया कर दिया। फिर उस नमाज को आसमानों की तरफ बुलंद किया जाता है, आसमानों की तरफ ले जाया जाता है, और हाल यह है कि उसके ऊपर तारीकी और अंधेरा छाया हुआ होता है और उस पर आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट जो पहली सूरत थी उसमें नमाजी की इस नमाज के लिए आसमानों के दरवाजे खोले गए थे, क्योंकि उसने नमाज की हिफाजत की जैसे नमाज की हिफाजत का हक था, और इसने नहीं की, जाया कर दिया, तो इसके लिए आसमानों के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। फिर फरमाया कि उसको एक पुराने कपड़े में लपेट कर उस नमाजी के मुंह पर मार दिया जाता है। और बाज रिवायतों में तो इस तरह मौजूद है कि 80 साल की नमाजें होंगी एक शख्स की, उसको काले कपड़े में लपेट कर बंदे के मुंह पे मार दिया जाएगा, क्योंकि उसने नमाज को जाया कर दिया था। अगर पढ़ी तो रियाकारी के लिए, या फिर नमाज के रुकू और सुजूद को जाया करता रहा, उसकी किरात कंप्लीट ना करता रहा। हम अगर चाहें तो गौर कर सकते हैं कि मेरी और आपकी नमाजें कैसी हैं। क्या हम नमाज जब पढ़ते हैं तो क्या तवज्जो के साथ पढ़ते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी तवज्जो कहीं और होती है और नमाज हम किसी और जगह खड़े होके पढ़ रहे होते हैं? जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और तवज्जो नहीं, सलाम फिरा तो पता चला कि मेरी तो नमाज मुकम्मल हो भी गई है। हमें खुद गौर करना है, अपना हिसाब, अपना मुहासबा हम खुद कर सकते हैं, हमारे से बढ़कर कोई और नहीं कर सकता। हमें खुद पता है कि हमारा जाहिर क्या है और हमारा बातिन क्या है। एहसान का दर्जा तो हदीस में यह बयान किया गया कि अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहु, कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि गोया तू खुद खुदा को देख रहा है। फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, और अगर ये स्टेमिना नहीं है तो कम से कम ये तो तवज्जो कर कि तेरा रब तुझे देख रहा है। ना पहली तवज्जो, ना दूसरी तवज्जो, नमाज पढ़ी ना पता चला नमाज में सूरत क्या पढ़ी, ना ये जहन में रहा कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कितनी रखते हुई, किस अंदाज में पढ़ी, इमाम ने कितनी रकात पढ़ी और इमाम ने कितनी रकात में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी। ये सब चीजें इधर उधर हो जाती हैं क्योंकि तवज्जो नहीं है। नमाज की अगर हम हिफाजत करेंगे तो नमाज हमारी हिफाजत करेगी और कल बरोज़े कयामत अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हमारे लिए सिफारशी बन के आ जाएगी। तो इन तमाम बातों से पता चला कि नमाज को अगर उसके हकूक के वाजिबा के साथ अदा करते हैं तो यही नमाज न सिर्फ बंदे की हिफाजत करती है और उसके लिए निजात का जरिया बन जाती है, बल्कि कल बरोज़े कयामत यही नमाज बंदे के लिए अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सिफारशी होती है। और जब इसे आसमानों की तरफ बुलंद किया जाता है तो इसके ऊपर चमक नौरानियत इसके ऊपर उभरी हुई होती है, और इसके लिए आसमानों के दरवाजे पहले से ही खुले हुए होते हैं। तो हमें खुद गौर करके अपनी नमाजों को बेहतर बनाना है, और याद रखिए इसके लिए ज़रूरी है कि बंदे के पास नॉलेज हो, बंदे के पास इल्म होना चाहिए कि नमाज को पढ़ना कैसे है, जो कोताहियां नमाज में हो रही थी उनको दूर करना है, नमाज के हकूक वाजिबा क्या क्या हैं उनके बारे में सीखना है, ताकि पता चल जाए कि नमाज के अंदर फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नमाज तोड़ देती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से नमाज हमारी मकरूह हो जाती है, इनका सीखना बहुत ज़रूरी। आइए चंद एक अहकाम नमाज भी शामिल करते हैं। बाज़ लोग ये पूछ लेते हैं कि नमाज पढ़ते हुए इंसान जब तवज्जो के साथ नमाज पढ़ता है तो अगर आंखों से आंसू रवा हो जाए, जारी हो जाए, अश्क बह पड़े, या फिर बंदे के अहवाल कई तरह के होते हैं, बसा औकात मसाइब व आलाम भी आते हैं, किसी मुसीबत की वजह से या किसी जिस्मानी दर्द की वजह से जो इसके जिस्म के ऊपर लाहिक है, उसकी वजह से अगर बंदा नमाज में रो पड़ता है तो क्या रोने से नमाज फासिद हो जाती है या नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ी तफसील के ऊपर अगर गौर करेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहसनो खूबी समझ सकेंगे। नमाज में किसी भी वजह से अगर बंदा रो पड़ता है, ख्वाब रोना किसी दर्द की वजह से हो, किसी मुसीबत के लाहिक हो जाने की वजह से हो, या किरात सुनकर खौफ खुदा इसके ऊपर तारी हुआ और उसकी वजह से आंखों से आंसू निकल पड़े, तो नमाज इससे फासिद नहीं होती, अगरचे के रोने से आवाज पैदा हो जाए या सिर्फ आंसू बहे, आवाज भी पैदा नहीं हुई सिर्फ आंसू बहे, नमाज फिर भी फासिद नहीं होती। अगर आवाज पैदा हो गई तो आवाज पैदा होने से भी नमाज नहीं टूटती। हां, अगर रोने में जो आवाज पैदा हुई है इसमें हुरूफ भी पैदा हो जाएं, जबकि इन्हें रोकना मुमकिन था लेकिन रोका नहीं, हुरूफ पैदा हुए जैसे आ उह उफ तुफ, इस तरह के अल्फाज जुबान से निकलना शुरू हो गए, इनको रोकना भी मुमकिन था, यानी इसके इख्तियार में था कि रोक सके लेकिन रोक ना सका, यानी इसने रोका ही नहीं। तो ये अल्फाज अगर पैदा होंगे तो ऐसी सूरत के अंदर इसकी नमाज टूट जाएगी, और अगर मरीज की जुबान से बे इख्तियार आह निकल पड़ी या इसने ऊह कहा लेकिन बे इख्तियार हुआ, यानी रोकना मुमकिन ही ना हो सका और बे इख्तियार जुबान से निकल गया, तो ऐसी सूरत के अंदर नमाज फासिद नहीं होगी। तो यह इख्तियार और अदम इख्तियार की भी सूरत है, मसले को दोबारा गौर से सुनेंगे तो उम्मीद है ये जहन में बैठ जाएगा। आइए मजीद एक और मसला सिलसिले में शामिल करते हैं। नमाज में खंखारने से क्या नमाज टूट जाती है या नहीं? देखिए, इस हवाले से जहन में यह बात रखें कि खंखारना अगर ना तो उजर की वजह से हो, यानी कोई उजर नहीं था ऐसे ही खंखार रहे, और ना ही इसमें कोई गर्ज़े सही है, और खंखारने में दो हर्फ भी पैदा हो गए जैसे आह अलीफ और हा आह, तो ऐसा खंखारना ये नमाज को फासिद कर देता है, यानी इससे नमाज टूट जाती है। लिहाजा वो लोग के जो मस्जिद में कईयों की आवाज खंखारने की आ रही होती है, गला साफ कर रहे हैं, तो अब गला साफ करना एक और नौइयत की है जिसकी मैं आपको वजाहत करूंगा। तो अब ये जो खंखारा जाता है अगर किसी गर्ज़े सही की वजह से ना हो और ना ही कोई उजर था, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज ये तोड़ देता है। और अगर खंखारना किसी उजर की वजह से हो, मसलन तबीयत का तकाजा है इसलिए खंखारा, या फिर किसी गर्ज़े सही की वजह से इसने नमाज में ऐसा किया है, मसलन आवाज में गले में कचरा आ गया तो अब उसे साफ करने के लिए इसने ऐसा किया, रेशे को साफ करने के लिए ताकि आवाज सही निकले, या इमाम साहब से गलती वाकई हुई, ये बोल तो ना सका लेकिन खंखारा ताकि इमाम की तवज्जो हो जाए और वो इस गलती को दुरुस्त कर लें, या इसलिए खंखारा कि खुद ये नमाज पढ़ रहा था, आगे से कोई गुजरने लगा तो इसने खंखार कर उसकी तवज्जो दिलाई, यानी गर्ज सही है ताकि वो गुनाहगार ना हो इसके आगे से गुजर कर, तो अब ये इसलिए खंखारता है, तो इस सूरत के अंदर नमाज फासिद नहीं होगी। तो ये बात जहन में रखिए कि खंखारना अगर किसी उजर की वजह से हो, वो भी उजर शरई, या फिर किसी गर्ज सही की वजह से हो, जिस तरह की मैंने मिसालें दी, तो फिर ऐसी सूरत में खंखारने से नमाज में फर्क नहीं आता। और अगर बगैर उजर के है और बगैर किसी गर्ज सही के ऐसे ही खंखारते जा रहे हैं और इसमें हरूफ जाहिर हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज टूट जाएगी। और अगर हरूफ जाहिर ना हुए तो फिर इस सूरत में भी खंखारना ये मकरूह है। लिहाजा कोशिश करें कि नमाज जब पढ़ें तो इन सब चीज़ों से पाक साफ होकर, हाँ कोई उज़्रे शरी हो, गर्ज़ सही हो, तो फिर खंखार लेने में हर्ज नहीं है। मज़ीद एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। बाज लोग ये भी पूछ लेते हैं, क्या नमाज पढ़ते हुए, जैसे आम तौर पर रमज़ान मुबारक में तरावी के लिए सवाल किया जाता है, क्या मुसहफ शरीफ यानी कुरान पाक हाथ में पकड़ कर हम तिलावत कर सकते हैं, या कुरान सामने रखा हुआ हो उसको देखकर पढ़ते रहें और अपनी नमाज अदा कर लें, या यूं भी हो जाता है कि दीवार किबला पर कुछ सूरतें लिखी हुई हैं, सूरह फलक है, नास है, सूरह काफिरून है, या सूरह फातिहा है, या सूरह इखलास है, या सूरह कौसर है, कोई और सूरत, या कुछ चंद एक आयात बजीरा जैसे सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं या इब्तदाई आयात बजीनात हैं, तो दीवार किबला पर हो या मेहराब मस्जिद में हो, ये आयात बजीनात अगर लिखी हुई हों और दुरान नमाज उन्हें देखकर अगर पढ़ते रहें, तो क्या ऐसा करना शरण जायज है? इस सवाल का जवाब इंतहाई तवज्जो के साथ समाप्त करने वाला है। नमाज में मुसहफ शरीफ से देखकर यानी कुरान पाक को देखकर पढ़ना ये मुतलकन नमाज को फासिद कर देता है। यूं ही अगर मेहराब वगैरह के अंदर लिखा हुआ है या दीवार के ऊपर चंद सूरतें लिखी हुई और उनको देखकर ये पढ़ते हैं, तो तब भी ये पढ़ना नमाज को फासिद कर देता है। हां अगर पढ़ा तो अपनी याददाश्त पर ही है, यानी जो याद था सूरतें ये याद थी उसके मुताबिक ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसहब पर नजर पड़ी है, यानी वो सामने जो लिखा हुआ था दीवार किबला पर या मेहराब मस्जिद के अंदर वो लिखा हुआ था, या कुरान सामने नजर आ गया, कोई और पढ़ रहा था उसकी तरफ तवज्जो गई है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है वो खुद नमाज में अपनी याददाश्त पर ही पढ़ा जा रहा है, तो इसमें शरण कोई हर्ज नहीं है। याद रखे नमाज पढ़ते हुए कयाम की हालत के अंदर खुशू खुजू वाली जो नमाज है वो ये है कि कयाम में हमारी नजर सजदा की जगह पर होनी चाहिए, इधर उधर ना देखें, सामने दीवार किबला की तरफ ना देखें, मेहराब मस्जिद के अंदर ना देखें, छत की तरफ ना देखें, लोगों की तरफ कनखियों से ना देखें, कोई पास बैठा कुरान पढ़ रहा है तो उसके कुरान मुसहफ की तरफ नजर ना करें, अपनी नजर सजदा की जगह पर रखें जबकि हम कयाम में हो। अगर ऐसी सूरत हम कायम करने में कामयाब हो गए तो यह जो सूरत पेश आ रही है उम्मीद है कि इस तरह का मसला फिर नमाज में पैदा नहीं होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब आज के सिलसिले में हम चंद एक रिकॉर्डेड सवालात भी शामिल कर लेते हैं। जी रिकॉर्डेड सवाल चलाइए।
मेरा नाम रहमतुल्लाह है, मेरा मुफ्ती इरफान साहब से ये सवाल है कि एक शख्स को चार रकत वाली नमाज में एक रकत मिली और बाकी उसकी तीनों रकतें छूट गई है, तो वो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद तीन रकतें वो किस तरह पढ़ेगा, सना के साथ सूरत फातिहा और दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ेगा या अकेली सूरत फातिहा और बाकी सूरतें पढ़ेगा?
जो शख्स जमात के साथ चार रकत वाली नमाज में आखिरी रकत के अंदर शामिल हुआ, यानी आखिरी रकत इसने इमाम साहब के साथ पाली है, पूरी मुकम्मल रकत पढ़ी, कादा अखीरा किया, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया और ये अपनी बकिया तीन रकातें पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, तो अब किरात ये इस तरह करेगा कि अब ये पहली रकत पढ़ने के लिए खड़ा हुआ है, ये तादाद के एतबार से दूसरी है, किरात के एतबार से पहली है, यानी इसमें यह सना पड़ेगा जैसे पहली रकत में सना पड़ी जाती, और फिर उसके बाद तावुज, तस्मिया, सूरह फातिहा, फिर तस्मिया और कोई सूरत साथ में मिलाएगा, फिर रुकू और सुजूद के बाद यह कादा करेगा। तशहुद पढ़ने के बाद यानी कलमाए शहादत तक पढ़ने के बाद यह खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर अपनी किरात के एतबार से दूसरी रकत पढ़ेगा। यह तादाद के एतबार से तीसरी होगी, किरात के एतबार से दूसरी होगी। इसमें तस्मिया पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, फिर उसके बाद तस्मिया और फिर कोई सूरत पढ़ने के बाद रुकू और सजदे करेगा, अब बैठेगा नहीं, फिर इसके लिए चौथी रकत के लिए खड़ा होगा। ये इसकी चौथी जो रकत है इसमें ये अकेली सूरह फातिहा पढ़ ले, या फिर ये सूरह फातिहा के साथ अगर कोई सूरत मिलाना चाहे तो मिला भी सकता है, शरण इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह ये अपनी चार रकातें मुकम्मल कर सकता है, आखिर में कादा अखीरा करे और फिर दोनों तरफ में सलाम फेर दे।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मगरिब की नमाज के बाद दो सुनते पढ़ने से और नफल पढ़ने से क्या सादुल अवाबीन वाला मुस्तहब अदा हो जाएगा या दो सुनतों के बाद दोबारा से छह नवाफिल पढ़ने होंगे?
मगरिब के फर्जों के बाद दो सुन्नत और चार नवाफिल के मजमुआ का नाम सलातुल अवाबीन है। इस नमाज की हदीस मुबारक में बहुत फजीलत है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, जिसने नमाज मगरिब के बाद छह रकात सलातुल अवाबीन पढ़ी और इनके दरमियान में कोई गलत बात इसने मुंह से ना निकाली तो ये जो छह रकात इसने पढ़ी हैं इनका सवाब 12 साल की इबादत के बराबर करार पाता है। बहुत ज्यादा सवाब है, हो सके तो कोशिश करके ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए। और ये छह रकात हैं, दो सुन्नत और चार नवाफिल, इनका मजमुआ अगर कोई पढ़ता है यानी छह रकात मुकम्मल पढ़ लेते हैं तो इसमें दो सुन्नतें भी हो जाती हैं और चार नफिल भी अदा हो जाती है, यानी ये मजमुआ ही सलातुल अव्वाबीन छह रकात कहलाएगा और सुन्नत का सवाब भी इसके अंदर मिल जाएगा। और अगर किसी शख्स ने दो सुन्नत पढ़े और फिर दो नफिल पढ़ लिए तो उसकी सलातुल अव्वाबीन अदा नहीं होगी।
मेरा नाम इमरान है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस शख्स में नमाज की इमामत की शराइत पाई जाती हो यानी नमाज पढ़ाने का अहल हो लेकिन एक हाथ कटा हुआ हो, क्या इसके पीछे नमाज हो जाएगी?
इमामत की अगर तमाम शराइत इसके अंदर पाई जाती हैं तो ऐसे शख्स के पीछे भी नमाज दुरुस्त है, बल्कि अगर यही शख्स तमाम हाजिरीन के अंदर जो जमात में शामिल हैं उनमें इल्म में ज्यादा है तो यही ज्यादा इमामत का हकदार होगा और बिला कराहत इसके पीछे नमाज हो जाती। हाँ, कराहत तंजीही सिर्फ उस सूरत में है कि जब उस जमात के अंदर कोई ऐसा शख्स भी मौजूद हो कि जो इल्म में इसके बराबर है या इल्म में इससे ज्यादा है तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। इसके पीछे अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये मकरूह तंजीही है, यानी नमाज फिर भी हो जाती है। बहर सूरत ऐसा शख्स अगर इमामत की शरायत रखता है, इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मजीद सवाल चलाइए।
मेरा नाम यासर है और मेरा सवाल यह है कि इमाम ने जख्म पर पट्टी की है और इस पर मसा करता है तो इसके पीछे अज़ा को धोने वाले अफराद की नमाज हो जाएगी?
जी हाँ, अगर इमाम साहब ने किसी उजरे सही की वजह से पट्टी बांधी है यानी उनके जख्म था और उस जख्म पर पट्टी बांधना जरूरी था, इस वजह से उन्होंने पट्टी बांधी और फिर उसके ऊपर मसा कर लिया तो उन्होंने शरीयत के हुक्म पर अमल किया। और पीछे नमाज पढ़ने वाले ऐसे लोग कि जिन्होंने मसा नहीं किया, पूरा वुजू किया है, तो ऐसे लोगों की नमाज भी इसके पीछे बिला कराहत जायज है, दुरुस्त हो जाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आज के इस सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआगो हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लम।
हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी दौलत से बढ़कर है दौलत नमाज, हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज।